समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम आज याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिवस या जयंती है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। वेल, दिस इज शगुन चोपड़ा विद सरफिरोजी हियर फॉर यू, एंड वी आर ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट न्यूज। We also have our discussion segment, Dateline India, and it just doesn't have one interesting topic, but two and three topics now. We also have reports, capsules, businesses, tributes, and a lot more. And all of this we have over the next 30 minutes. So make sure, listeners, that you stick around till the end. I mean, whatever you are doing, just be with us. You just have to be tuned in with us for the next 30 minutes. We'll begin with the headlines first, Sir Firozi.
जी बिल्कुल शगुन। लोकसभा ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों को पारित किया, राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई।
Tuberculosis cases in India decline more than double the global reduction rate, says Minister of State for Health Anupriya Patel.
लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट बिजली सब स्टेशन में भीषण आग लगने के बाद 24 घंटे के लिए बंद, एयर इंडिया ने लंदन जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की।
इंडिया सबमिट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइज कॉमनवेल्थ गेम्स एट अहमदाबाद इन 2030।
और आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है, सतत भविष्य के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के वास्ते ये दिन मनाया जाता है।
And now, listeners, it is time for our segment Dateline India. And today, as we told you in the beginning, we will talk about three important days. But first, we'll begin with International Day of Forest. The other two to come are World Day for Glaciers and World Down Syndrome Day. We'll begin with International Day of Forest.
Gee.
Well, do you want to know where I found my inspiration? It was in a tree. The tree supports the large branches. The smaller branches and the twigs support the leaves, and every single part grows harmonious, magnificent. These are the words which I am remembering from Antoni Gaudi.
जी बिल्कुल शगुन, पेड़ हमें झुककर रहने का महत्व सिखाते हैं, क्योंकि जब वे फलों से लदे होते हैं तो वो झुक जाते हैं, जो विनम्रता और नम्रता का प्रतीक है। पेड़ हमें बताते हैं कि सफलता और प्रसिद्धि मिलने पर भी हमें विनम्र बने रहना चाहिए। और श्रोताओं, आज हम पेड़ों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 21 मार्च को विश्व भर में पेड़ों और वनों के महत्व को पहचानने और उनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है।
And let us tell you when it was started. All of this started in the year 2012 when the United Nations declared March 21 as the International Day of Forests to celebrate and raise awareness about the vital role that forests play. And let me talk about the theme for this year. It is Forests and Food, which emphasizes the deep connection between forests and global food security.
बिल्कुल शगुन, और हम सभी जानते हैं कि वनों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, बल्कि यूं कहें कि वन हमारे ग्रह की भी जीवन रेखा है। ये भोजन, दवा और रोजगार तो प्रदान करते ही हैं, बल्कि एक चीज जिसके बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते वो भी वनों से ही मिलती है। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। वन वैश्विक खाद्य सुरक्षा के स्तंभ हैं, जो फल, बीज, जड़े जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, जो स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों का समर्थन करते हैं।
एंड सर फिरोजी, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, वी नो हाउ फॉरेस्ट आर डीपली इंटरट्वाइंड विद कल्चर, इकोनॉमी एंड बायोडायवर्सिटी, एंड द प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल नेसेसिटी बट ऑल्सो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जी बिल्कुल।
एंड डू यू नो, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट मी पुट अप अ क्वेश्चन, फॉरेस्ट हाउ मच दे कवर लाइक द अर्थ ऑफ आवर अर्थ, how much area, like
मैं बहुत श्योर नहीं हूँ बट शायद 40%.
Yeah, which is it forests cover 1/3 of Earth's land.
Wow.
And they support Sarfirozi, if we talk about, they support our biodiversity and also combat climate change and provide essential resources.
जी बिल्कुल शगुन, और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर देशों को वनों और वृक्षों से संबंधित गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण अभियान के आयोजन हेतु स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
Also, Sarfirozi forests help in forest mitigation. This process is essential in reducing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, thus averting more extreme global temperature rises. And more than, as we told you, forests cover 1/3 of the Earth's land. That's why they are able to do it for us.
जी बिल्कुल. और शगुन कहते हैं कि वन प्राकृतिक कार्बन सिंक है, यानी कि ये कार्बन को अवशोषित करते हैं, इसे अपने तने, जड़ों, शाखाओं और मिट्टी में जमा करते हैं. और हमने जैसे कि बात की कि इसके बदले हमें वो ऐसी चीज देते हैं जिसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, यानी कि ऑक्सीजन. जैसे जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं. और हम वनों के साथ, पेड़ पौधों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये जल वायु संकट को धीमा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. हम देखें कि अगर ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षारोपण करते हैं और इस तरह के अभियान चलाते हैं तो इससे टेम्परेचर कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है.
जी, आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट ओवर हियर सरफिरोजी. यू वर टॉकिंग अबाउट CO2 एंड ऑक्सीजन. वेल, ईच ईयर द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट दे अब्सॉर्ब 16 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स अ लॉट एंड दैट्स मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशंस. However, if forests are destroyed, then they can actually worsen climate change by releasing more carbon than they will be able to absorb.
जी, और सभी जीवों का जीवन आपस में जुड़ा हुआ है और हम सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जंगल की जमीन पर जो बिखरे पत्ते होते हैं, जो पेड़ों से टूटकर सूखकर नीचे गिर जाते हैं, वो पत्ते भी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी मिट्टी के पोषक तत्वों की भरपाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. और जमीन के नीचे पेड़ एक दूसरे के साथ पोषक तत्वों को साझा करने के लिए कवक के एक नेटवर्क का प्रयोग करते हैं. और क्योंकि जंगल में जीवन एक दूसरे पर इतना निर्भर है, इसलिए जब इनका एक हिस्सा नष्ट हो जाता है तो ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देता है.
Well, this intricate network that you're talking about, well, it's really interesting to note it here, Sarfirozi. It's mind-blowing, actually. And forests, they also provide employment and generate income for millions of people worldwide. Many types of jobs depend on forests and their resources, such as loggers and also construction works, to trekking guides and forest rangers.
और शगुन, एक अनुमान की माने तो दुनिया भर में लगभग 35 करोड़ लोग जंगलों के भीतर या उसके आसपास रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर हैं. इसमें स्वदेशी लोग शामिल हैं जो अपने निर्वाह और अस्तित्व के लिए लगभग पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर हैं.
And forests, they are excellent place to forage for wild foods such as berries, mushrooms, leaves, tubers and nuts, which, you know, people also, they collect and use it. And the wild animals, they live in forests and are an important source of protein. And do you know how sad it is that every year more than 4 million people, they die as a result of outdoor air pollution? But forests help to keep people healthy by purifying the air that we breathe. In addition to absorbing carbon dioxide, trees remove other harmful pollutants from the air and pump out oxygen. And also, one, the forest, plants, the trees. We should plant trees today to celebrate World Forest Day. It's a great way to show our gratitude for all they do for us and ensure future generations will be able to enjoy the same benefits,
right? बिल्कुल शगुन, आज हम जो करेंगे उसका फल हमें वापस मिलेगा. तो यानी कि वृक्षारोपण या इस तरह की जो भी हम पहल करते हैं उनका फायदा घूमकर हमें ही होने वाला है.
Definitely. And now, Sarfirozi, let's move on. Let's talk about World Day for Glaciers. And this day, which is being observed for the first time, the United Nations declared 2025 as the International Year of Glaciers Preservation, accompanied by the proclamation of the 21st of March every year as World Day for Glaciers, which is, of course, starting this year.
ग्लेशियर को हिमनद नाम से भी जाना जाता है और पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ की जो परत पाई जाती है, इस गतिशील बर्फ की परत को ही ग्लेशियर कहा जाता है।
एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ 70% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज स्नो और आइस एंड रन ऑफ फ्रॉम ग्लेशियर्स। स्नो एंड आइस आर एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। Climate and cryosphere change impact the water cycle, including changing the amount and timing of glacier melt and snow melt discharge, groundwater recharge and low flows, and then contribute to sea level rise.
जी बिल्कुल शगुन, और बहुत अफसोस की बात है कि अब ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। इनके सिकुड़ने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और कई प्राकृतिक और मानवीय जल आपूर्ति के लिए गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पीने का पानी बचा ही नहीं है।
Well, and our listeners should be, they would be amazed to know that glaciers are a crucial testimony of the Earth's history.
जी.
In their eyes, glaciers contain an important record of the past climate and environment, and the disappearance, as you were focusing, the disappearance on of glaciers results in the irreversible loss of unique archives of human environmental and climate history. So it is our responsibility to work for the climate change, and future generations are not going to ask us what political party were you in. They are going to ask what you did about this particular thing when you knew the glaciers were melting. This was why Martin Sheen said this. Now let's move on again to the next topic that we have today. World Down Syndrome Day is being observed today. And this day is a global event commemorated every year to highlight the need for stronger community networks, better caregiver support, inclusive education, workplace inclusion and enhanced healthcare access for the individuals with Down Syndrome Day.
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आज मनाया जा रहा है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला दिवस है। ये दिवस मानव में जेनेटिक बीमारियों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य इस अनुवांशिक समस्या से पीड़ित लोगों के समर्थन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस तिथि को चुना ताकि डाउन सिंड्रोम और 21वें क्रोमोसोम के ट्रिप्लिकेशन के बीच के संबंध को उजागर किया जा सके, जिससे ये अनूठा बनता है। ये दिन डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी देने का अवसर है।
एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विद डाउन सिंड्रोम इट कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड हाउ? बाय मीटिंग देयर हेल्थ केयर नीड्स, इंक्लूडिंग रेगुलर चेकअप्स विद हेल्थ प्रोफेशनल्स टू मॉनिटर मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड टाइमली इंटरवेंशन, बी इट फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, काउंसलिंग और स्पेशल एजुकेशन।
जी बिल्कुल शगुन, और साथ ही एक समाज के रूप में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां उनकी तरफ बनती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के फेशियल फीचर्स कुछ अलग होते हैं, जिसके कारण उनका अक्सर उपहास किया जाता है। उनकी शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। जबकि हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोग पहले से ही जीवन से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। आपने बताया कि किस तरह उनको थेरेपी की जरूरत होती है, तमाम उनको मेडिकेशंस चाहिए होती हैं। उसके बाद एक समाज के तौर पर हमारी इतनी तो जिम्मेदारी है कि अगर हम उनकी किसी तरह सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उनका उपहास बनाकर उन्हें असहज न महसूस कराएं।
वेरी ट्रू दैट सर फिरोजी, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट इट इज नॉट अ डिजीज बट अ नेचुरल क्रोमोसोमल वेरिएशन, एज यू वर एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज। एंड एवरीवन, एवरीबॉडी, बी इट हुमसोएवर इट इज, एवरीबॉडी नीड सपोर्ट समटाइम्स, एंड पीपल विद डाउन सिंड्रोम नीड सपोर्ट टू लिव एंड बी इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी लाइक एवरीबॉडी एल्स। Families also need support as they are often supporting their own family members with Down syndrome. And governments must make sure that there is a support system so people with disabilities are included in the community.
और श्रोताओं, अब समय है आपको देश की परिक्रमा पर लेकर चलने का और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं शगुन नागपुर की। नागपुर को संतरा नगरी कहा जाता है। नागपुर के मिहान में स्थित पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया। इस संयंत्र की वजह से संतरा उत्पादक किसानों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध हो सकेगा। हमारे संवाददाता इस पर और जानकारी दे रहे हैं।
नागपुर के मिहान स्थित पतंजलि के फूड एवं हर्बल पार्क को प्रतिदिन लगभग 800 टन संतरे की आवश्यकता होगी। इससे केवल नागपुर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांवों के संतरा उत्पादक किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर के मिहान क्षेत्र में पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने संतरा उत्पादन को लेकर पतंजलि समूह को आश्वस्त किया।
हमारे यहाँ जो संतरा तैयार होता है उसमें जो छोटा संतरा है वो मार्केट में 12 से 13 रुपए किलो के भाव से बेचा जाता है। सबसे पहले खुशी की बात है कि पतंजलि ने जाहिर किया है कि ये संतरा अब वो 18 रुपए किलो के भाव से खरीदी करेंगे। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत और कलम भी अच्छी तैयार करेंगे। संतरे का कलम अच्छी लगाने के बाद उत्पादन भी बढ़ाएंगे, ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे और ऑर्गेनिक केमिकल का भी उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का भी उपयोग करेंगे और रामदेव जी आपको लगने वाला संतरा हम बड़े प्रमाण पर उपलब्ध करा कर देंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
संतरा उत्पादक किसानों को बड़े पैमाने में इस फूड एवं हर्बल पार्क की मदद होने वाली है। इस उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण, कृषि राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल आदि उपस्थित थे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हेमांगी कुलकर्णी।
We'll now travel to Nagaland, where the district-level Viksit Bharat Youth Parliament 2025 commenced in Dimapur today. Organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports, the two-day event is being hosted by Eastern Christian College. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's vision, the Viksit Bharat Youth Parliament is a platform for young voices to engage in national discussions and shape the vision for Viksit Bharat at 2047. It fosters leadership, civic participation, and policy discussions, enabling students to deliberate on key national issues. We have more on this from our correspondent.
Young minds from five districts of Nagaland are taking part in the district-level Viksit Bharat Youth Parliament 2025. Out of the 202 participants screened from five districts of Dimapur, Chumukedima, Peren, Newland and Wokha, 127 are taking part in today's district-level Youth Parliament. These young minds are engaging in vibrant discussions on the topic One Nation, One Election, exploring its potential benefits and challenges. This session provided a platform for young voices to critically analyze policy issues and propose innovative solutions. We spoke to the nodal officer of Viksit Bharat Youth Parliament district level, Mr. Ben Dang, who shares more on the event.
Today we are expecting around 90 students from among the different colleges in Dimapur district, and tomorrow likewise the other remaining districts will be participating for the event, first set event.
Let's also hear from the participants.
My name is Mr. Logan J.K. Taman and I am a student from Patkar Christian College, Autonomous Jammu. I feel really glad and I am very happy to see many students coming out from different institutions giving out their opinion on this particular topic.
My name is Imamla and I'm from Emmanuel College, Dimapur. This is my very first time experiencing and attending the Youth Parliament, and it was a great experience for me. As a member of this Viksit Bharat Youth Parliament, I want to encourage you all that you should all be open-minded and look forward for a better developed India.
Following this two-day event, 10 youth will be chosen to compete at the state level, and ultimately the three winners from the state event will proceed to the national level session at Parliament House in New Delhi. For Parikrama, Mary, Akashvani News, Kohima.
और शगुन, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपनी डेटलाइन में चर्चा की विश्व वन दिवस के बारे में, और एक चीज जो हम शायद वहां चर्चा नहीं कर पाए कि भारत में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई तरह की पहल की गई हैं, कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो आज विश्व वन दिवस के अवसर पर हम गुजरात में शुरू किए गए एक अनोखे और प्रभावशाली जंगल संरक्षण प्रयास के बारे में चर्चा करेंगे। गुजरात में स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी को हरा भरा बनाने के लिए ये वन संरक्षण प्रयास यानी हरित अंबाजी वृक्षारोपण परियोजना लागू की गई है। ये परियोजना न केवल प्रकृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इससे रोजगार सृजन के अवसर भी जुड़े हैं। सुनते हैं हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वन विभाग ने अंबाजी पहाड़ी को हरा भरा बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। हरित अंबाजी वृक्षारोपण परियोजना के तहत मियावाकी पद्धति से 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदाय के लिए भी लाभकारी है। इस परियोजना में स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। किसान नीम भाई बिगड़िया इस परियोजना के बारे में बात करते हुए कहा,
बाजार में बेच के हम कमा सकते हैं, केसुड़ा है, कोई टिम्बरू है, ऐसे हम बेच के हमारा गुजरान चलता है। और पहले ऐसे बंजर जमीन थी, अभी फायदा ही फायदा, और इससे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं और अच्छा सा काम कर सकते हैं।
यह वृक्षारोपण परियोजना हमें न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, बल्कि इससे हमारे इलाके में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। वन विभाग के सहायक वन संरक्षक जिगर मोदी ने इस परियोजना की सफलता के बारे में कुछ इस प्रकार कहा।
गुजरात राज्य के वन विभाग ने अंबाजी, जो लोगों का आस्था का केंद्र है, उसको ग्रीन करने का एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है और उसमें हमारे सारे एम्प्लॉय गांव लोगों की सहायता से उसको पूरा ग्रीन करने के लिए अपनी मेहनत उसमें लगा रहे और उसका रिजल्ट हमें मिला है।
वन विभाग की यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे स्थानीय समुदाय को भी लाभ मिल रहा है। गुजरात में पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक अभियान नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। गुजरात सरकार का यह वन विभागीय प्रयास स्थानीय स्तर पर सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार प्रदान करेगा। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंट।
कार्यक्रम परिक्रमा में अब बात खेलों की। राष्ट्रीय राजधानी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण जारी है। पैरा गेम्स के दूसरे दिन खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई खिलाड़ी अब तक पदक भी अपने नाम कर चुके हैं। 8 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में 1,300 से अधिक पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जो 6 खेलों पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक के पास। अभिषेक, इस वक्त जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या माहौल है और किस किस खिलाड़ी ने पदक अपने नाम कर लिए हैं?
स्टेडियम में इस वक्त उत्साह का माहौल है, जहां खिलाड़ियों से अधिक दर्शक हैं। एथलेटिक्स की सभी प्रतियोगिताएं इसी स्टेडियम में खेली जा रही है, जिसमें अब तक कई खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम कर लिए हैं। इस कड़ी में शॉर्ट श्रेणी में रवि रोंगली ने गोल्ड, अभिषेक ने सिल्वर और मनोज सिंह रजा ने ब्रॉन्ज पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं 100 मीटर दौड़ श्रेणी में चैतन्या ने गोल्ड, मीत पहाड़ी ने सिल्वर और कलाराम पटेल ने ब्रॉन्ज पदक।
और अभिषेक, जेलन स्टेडियम के अलावा और किन स्टेडियम में कौन से मुकाबले खेले जा रहे हैं?
इस बार पैरा गेम्स का आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जो खेलो इंडिया मिशन के तहत आता है। मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उनका इनिशिएटिव है। और इस बार जेएनएल के अलावा इंदिरा गांधी वर्ल्ड स्टेडियम में बैडमिंटन और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग की प्रतियोगिताएं चल रही है।
धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए।
Moving on to another sports update, the BCCI has lifted the ban on using saliva to shine the ball in the Indian Premier League, IPL, after most captains supported the move. This makes the IPL the first major cricket league to reverse the COVID-era restriction. The ICC banned age-old practice of applying saliva on the ball in 2020 as a health precaution during the pandemic. In 2022, ICC made the restriction permanent, and the IPL also adopted the rule in its playing conditions. The decision was taken at the captains' meeting in Mumbai ahead of the league, which started on Saturday. Well, I beg your pardon, the league will be starting on Saturday. And now moving on to the business news updates. The benchmark domestic equity indices today ended week's last trading session on a strong note, extending their winning streak for the fifth straight session amid buying across most sectors and renewed optimism over easing foreign selling. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex advanced 557 points, or 0.73% to close at 76,905. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 160 points, almost 0.7%, to settle at 23,350. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.3% up at $71.06 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.3% up at $67.86 per barrel when reports last came in. And now, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने 21 मार्च 1858 को लखनऊ की घेराबंदी तोड़ने में सफलता पाई थी। स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्ला शाह और उनके 1200 सैनिक शहर के मध्य में किलेबंद मकान से बाहर निकाले गए। इस अंतिम किलेबंदी के खत्म होते ही ब्रिटिश सेना अवध राज्य में संगठित स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने में कामयाब हो गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को 1856 में अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। मई 1857 में जब देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ तो भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश आधिपत्य को चुनौती दी गई, लेकिन विशेष रूप से अवध में अंग्रेजों को सशक्त चुनौती मिली, जहां सत्ता से बेदखल शासकों और जमींदारों ने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया था।
लखनऊ में 1 जुलाई से 26 नवंबर 1857 तक ब्रिटिश सेना शहर के उत्तरी क्षेत्र में रेजिडेंसी की किलेबंदी के समक्ष डटी रही। सर्दी के दौरान अंग्रेज दिल्ली और कलकत्ता के साथ संचार स्थापित करने में कामयाब हुए। उन्हें अधिक सैन्य सहायता भी मिली और उन्होंने परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी सुदृढ़ बना ली।
11 मार्च 1858 को बेगम कोठी के लिए भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें 600-700 स्वाधीनता सेनानी शहीद हुए। 14 मार्च को अंग्रेजों ने कैसरबाग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके रक्षकों ने बिना किसी कठिनाई के उस पर पुनः अधिकार कर लिया।
16 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने रेजिडेंसी पर चढ़ाई कर दी और बेगम हजरत महल तथा उनके पुत्र बिरजिस कद्र को महल से निकाला गया। 21 मार्च को शहर के मध्य में किलेबंद मकान को भी स्वाधीनता सेनानियों से पूरी तरह खाली करा लिया गया और अंग्रेजों ने शहर को विद्रोही गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया।
आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मो का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी स्टेवंस की हत्या के संबंध में 21 मार्च 1932 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था।
आज एडिटर और स्क्रीन राइटर अपूर्व असरानी का जन्मदिन है। इन्होंने सत्या, शाहिद, सिटी लाइट्स और अलीगढ़ आदि फिल्मों के स्क्रीन प्ले और संवाद लेखन किया। इन्हें 1999 में फिल्म सत्या की एडिटिंग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद 2001 में इन्हें फिल्म स्निप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया।
सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया।
Well, today we're also remembering Nataraj Ramakrishna. He was the chairman of Andhra Pradesh Sangeet Natak Academy, and today it's his birth anniversary. He was also a scholar and musicologist who promoted classical dance in Andhra Pradesh and also worldwide.
आज जयंती है उस्ताद बिस्मिल्ला खां की। ये भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक थे। 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्टम पुरस्कार तथा अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बिस्मिल्ला खां ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में मुख्य योगदान दिया। वर्ष 1947 में देश की आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर भारत का तिरंगा फहरा रहा था, तब बिस्मिल्ला खान की शहनाई भी वहां आजादी का संदेश बांट रही थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन ने इन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। आखिरी बार उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की हिंदी फिल्म स्वदेश के गीत ये जो देश है तेरा में शहनाई की मधुर तान बिखेरी थी।
let's remember another musician, John Sebastian Bach. Well, he came from a family of musicians and was taught to play the organ by his eldest brother. His influence has affected every subsequent major composer, including Beethoven and Brahms. And listeners, this is the composition that you're listening by him, Badinri.
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शगुन को. परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार.